मेरे अजीज नौजवान साथियों नमस्कार। आज 1 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं गौरव कुमार, आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, राकेश कुमार माधेपुरा बिहार से हैं, राकेश कुमार यादव बादलपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं और मोहम्मद इरशाद अंसारी आप हजारीबाग झारखंड से हैं। तो गौरव, राकेश कुमार यादव और मोहम्मद इरशाद आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आइए अब हम अपनी बात पर आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी 1-2 सूचनाएं आप लोगों को दे दूं। कुछ दिनों से मेरे पास स्टूडेंट्स के मेल आ रहे हैं और मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो कि 11 मार्च की क्लासेस के लिए भोपाल पहुंचने वाले हैं, तो वो एक प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं और आप लोगों का जानना बिल्कुल सही है, हालांकि वो वेबसाइट पर दिया हुआ है, लेकिन चलिए दिया हुआ होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पहले दिन यानी कि 11 मार्च को जो क्लास लगती है, सामान्यतः जो क्लास के टाइम है वो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे, राइट। लेकिन हम लोगों को मालूम है, जो अनुभव रहा है हम लोगों का, कि किसी की ट्रेन लेट हो रही है, कोई आ भी गया है तो बिल्कुल थोड़ा सा पहले आया है तो हड़बड़ करके पहुंचता है। जब 10 बजे हम क्लासेस शुरू कर देते थे तो कुछ लड़कों में तो इतनी उत्सुकता होती थी कि वो सीधे स्टेशन से सामान लेकर के ही क्लास के लिए पहुंच जाते थे। हम समझ सकते हैं कि अब ये स्टूडेंट ट्रैवल करके आया है, क्लास तो अटेंड कर रहा है, उसकी जो जिज्ञासा है, उत्सुकता है, वो अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन जब तक आप फ्रेश नहीं हो जाते, थोड़ा इत्मीनान से क्लास में नहीं आते, तो आप क्लास का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसके बाद से मित्रों हम लोगों ने फैसला किया कि जो पहले दिन की क्लास है वो 11 बजे शुरू होती है, केवल पहले दिन की याद रखिए, यानी कि जो 11 मार्च की जो क्लास लगेगी वो 11 बजे शुरू होगी। तो आपको जो अपना रिजर्वेशन कराना है आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं। उससे पहले आप आना चाहते हैं आप पहले आ जाइए, लेकिन इससे पहले पहले कोशिश कीजिए कि आप क्लास में पहुंच जाए। और जो आखिरी दिन होता है यानी कि जो 25 मार्च जो होगी, 25 मार्च को सामान्यतया हम जो इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो 5 बजे तक खत्म कर देते हैं। देखिए हालांकि 6 बजे तक का टाइम है, 5 बजे तक इसलिए खत्म कर देते हैं कि उसका भी हम लोगों का अनुभव रहा है उसके बारे में, कि स्टूडेंट्स की किसी की ट्रेन का वक्त हो रहा है, किसी के बस का टाइम हो रहा है तो लोग जाना शुरू कर देते हैं, तो उनकी सुविधा को देखते हुए ही फिर लास्ट डे पर क्लासेस 5 बजे खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह से 2 घंटे की आपकी टोटल कमी आती है, लेकिन इन 2 घंटों की जो कमी आती है टोटल कैलकुलेशन में, उससे ज्यादा घंटे हम बीच में कवर करते हैं, क्योंकि सामान्यतः होता यही है कि जो आखिरी की क्लास होती है वो थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है। तो दोस्तों ये आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने बताया है ताकि आप लोग अपने आने का और लौटने का प्लान उसी तरीके से कर लें, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिजर्वेशन आप लोग स्वाभाविक है कि थोड़ा पहले कराते हैं, कराना भी चाहिए। मित्रों अब हम आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर। पहली बात तो मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो स्पोर्ट्स पर होगा, स्पोर्ट्स पर हम कुछ बातें करेंगे, खेल पर, भारत में खेल ये कह सकते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जो दूसरी बातें हैं वो बता दूं। मित्रों उत्तर प्रदेश के कासगंज में जो अभी एक दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई है वो लगातार अखबारों में आ रही है, मैंने इसे अभी अपने विश्लेषण में नहीं लिया है, देखते हैं कि आगे क्या स्थिति बनती है और अगर लगता है कि इसमें से कुछ विश्लेषण के लिए बातें निकलेंगी तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली चूंकि एक बड़ी घटना है तो स्टेट सिविल सर्विस के लिए उनको इस घटना पर नजर रखना चाहिए, उसकी जो एनालिसिस आ रही होगी वहां के अपने अखबारों में उसे भी ध्यान से पढ़ना चाहिए और इस पर अपना एक मत भी एस्टेब्लिश करना चाहिए कि इसके क्या कारण हैं, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, क्या उपाय किए जाने चाहिए, इन बिंदुओं पर उन्हें विचार करना चाहिए। मित्रों एक कुछ शब्द हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ शब्द हैं। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा लुकआउट नोटिस है ना, लुकआउट नोटिस दिया गया है, ये लुकआउट नोटिस क्या होता है? देखिए, लुक का मतलब होता है देखना, है ना, लुकआउट नोटिस, नोटिस का मतलब है कि एक सर्कुलर, एक आदेश, है ना। तो यह एक ऐसा आदेश समझ लीजिए, आदेश पत्र है जो अथॉरिटी जारी करती है, यानी कि सरकार जारी करती है, कोई संस्था जारी करेगी, लेकिन वो सरकारी संस्था होगी, जो अथॉरिटी जारी करती है। और किस चीज के बारे में जारी करती है? वो एक व्यक्ति के बारे में जारी करती है, और उसका पर्पज ये होता है कि ये जो व्यक्ति है, जो यात्रा करने वाला व्यक्ति है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पुलिस की तलाश है, ये चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पुलिस ढूंढ रही है। इसका पर्पज ये होता है फ्रेंड्स, खास करके कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस तो उस आदमी को तलाश कर रही है और पता लगा कि वह व्यक्ति देश छोड़कर भाग गया। अब देश छोड़कर के देखिए, कोई भी भागेगा तो उसके दो मेन तरीके हो सकते हैं, एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कह लीजिए बंदरगाह, या हमारी जो सीमा अगर स्थल से मिल रही है तो वहां पर जो चेक पोस्ट होते हैं। तो वो लुक जिसके लिए भी लुक आउट नोटिस जारी कर दिया जाता है, तो वहां पर विशेष रूप से उसकी चेकिंग होती है, तो वो व्यक्ति भाग नहीं पाता। ये है लुक आउट नोटिस। दोस्तों, आप लोगों ने कल चंद्र ग्रहण का आनंद लिया होगा, देखा होगा, उसमें कुछ शब्द आपको पढ़ने को मिले होंगे, सुपर मून, ब्लू मून, रेड मून, आज के अखबारों में भी ये बातें हैं। मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से थोड़ा सा इसे भी जान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये होता क्या है। देखिए, सुपर मून, सुपर से आप अर्थ लगा सकते हैं, मून सामान्य मून है, चंद्रमा निकल रहा है, जैसे विमेन, सुपर विमेन, मैन, सुपरमैन, मतलब मनुष्य है, ठीक है, लेकिन सुपरमैन है कि वो मनुष्य से कुछ अधिक है, कुछ विशेष है। इसी को आप अप्लाई कर दीजिए मून के ऊपर, यानी कि मून, यानी कि ठीक है, मून रोज निकल रहा है लेकिन सुपर मून है, तो इसका मतलब है कि उस दिन का जो चंद्रमा है वो कुछ ज्यादा है, कुछ अधिक है। तो अधिक क्या होता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, बस। अब चंद्रमा का तो आकार ही आपको दिखाई देगा, और साथ ही साथ अब चूंकि ज्यादा बड़ा है तो सीधी सी बात है कि वो ज्यादा चमकीला भी दिखाई देगा। आकाश में अगर कोई चीज बड़ी होगी तो ज्यादा चमकदार भी आपको दिखाई देगी। तो सुपर मून वह चंद्रमा है जो अपने सामान्य आकार से लगभग लगभग 15% के आसपास बड़ा दिखाई देता है, और लगभग लगभग 30% के आसपास अधिक ब्राइट होता है, चमकीला होता है, है ना। ये घटना कभी कभी घटती है, और इसके पीछे जो रीजन होता है, देखिए रीजन ये होता है कि उस दिन उन घड़ियों में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर होता है, मतलब पृथ्वी के सबसे करीब होता है, कह लीजिए। देखिए, जो चीज भी हमारे जितने करीब होगी हमें वह उतनी बड़ी दिखाई देगी। चंद्रमा तो उतनी बड़ा तो नहीं है, चंद्रमा बहुत बड़ा है, लेकिन वो जितनी दूर चलता चला जाएगा हमसे, हमको उतना छोटा दिखाई देने लगेगा, और हमारे जितना करीब आता चला जाएगा उतना हमें बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो चूंकि सुपर मून पहले से बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए सीधी सी बात है कि वो पहले जितनी दूर हमसे रहता था, हमारे थोड़ा सा करीब और आ गया है, तो उसका और आकार बड़ा हो गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये है सुपर मून। देखिए, मैंने इसकी जो व्याख्या की है जानबूझ करके थोड़ी इस तरीके से की है कि आपको पढ़ने का एक तरीका भी पता लग जाए कि कैसे हम रीजंस निकालते हैं, कारणों को ढूंढते हैं याद करने की बजाय। मित्रों, जो दूसरा जो चंद्रमा होता है, देखिए वो है ब्लू मून। ये ब्लू मून क्या है? देखिए, ब्लू का मतलब है नीला। अब चंद्रमा जैसा भी दिखाई देता है, थोड़ा सा ब्लू, चांदनी रात कहते हैं, थोड़ा सा ब्लू जैसा ही होता है, हल्का ब्लू जैसा ही होता है, लेकिन ब्लूइश, यानी कि उस दिन चंद्रमा कुछ ज्यादा ही नीला दिखाई दे रहा है। और नीला क्यों दिखाई दे रहा है, एक बहुत सिंपल सा उसका जो रीजन होता है वो है कि उस दिन वातावरण में, या उस क्षण वातावरण में, धुआं और धूल का कण ज्यादा हो गए हैं, धूल के कण ज्यादा हो गए, उसके कारण जो चंद्रमा का जो रंग है वो मून ब्लू दिखाई देता है, हमें वो लगता है कि जैसे वो ज्यादा नीला हो गया है। दूसरी इसकी डेफिनेशन एक ये भी आपको कहीं पढ़ने को मिल जाएगी कि जब एक महीने में दो बार फुल मून आए, फुल मून किसको कहते हैं हिंदी में, इसके लिए शब्द है पूर्णिमा, पूर्ण इमा, पूर्ण मतलब संपूर्ण, कंप्लीट, इमा मतलब रोशनी, चंद्रमा, जब चंद्रमा एक महीने में दो बार पूरा दिखाई दे, देखिए चंद्रमा दो बार पूरा दिखाई नहीं देता, एक आपको मालूम है 15 दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं जो शुक्ल पक्ष होता है, और 15 दिन को हम अमावस्या कहते हैं जो कृष्ण पक्ष होता है, उस समय चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है, लेकिन फुल मून वो होता है जब एक महीने में दो बार चंद्रमा दिखाई दे, इसे फुल मून कहते हैं। तो दोस्तों ये एक इनकी छोटी सी जानकारी थी, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में प्री में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो मैंने थोड़ी सी जानकारी उसकी आपको दे दी है। दोस्तों आइए अब हम आते हैं खेल के ऊपर। खासकर मैंने इस विषय को इसलिए चुना है कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया है, और कल के न्यूज में भी आपने सुना होगा कि उन्होंने ये बात कही कि खेलों को जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए, जो स्पोर्ट्स है वो एक मास मूवमेंट का रूप लिया जाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि हमारे यहां तो जो संस्कृति है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब का, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब वाली संस्कृति रही है। इसी वजह से भारत ने खेलों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी, समाज ने नहीं दिया, और सच पूछिए तो हमारे परिवारों ने भी नहीं दिया। और मित्रों जब अगर यदि मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मुझे लगता है कि खेल पर हर साल यूं मान करके चलिए कि एक प्रश्न तो पूछे जाने की संभावना होती है स्पोर्ट्स के ऊपर। और जनरली जो आपके मेंस में जनरल स्टडीज का जो सेकंड पेपर होता है उसमें खेल के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड पेपर में देखिए इसलिए क्योंकि सिलेबस में अलग से नहीं दिया हुआ कि स्पोर्ट्स पर पूछा जाएगा, इसे आप करंट अफेयर्स का मान करके चल सकते हैं। लेकिन चूंकि देखिए जो खेल का विकास है वो बिना सरकारों के सपोर्ट के नहीं हो सकता, हम सोचे कि केवल समाज उसके लिए कर लेगा, केवल परिवार उसके लिए कर लेगा, तो वो संभव नहीं है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना। तो राज्य की नीतियां इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो इसीलिए चूंकि ये राज्य की नीतियों से संबंधित है तो शायद इसको सेकेंड पेपर के तहत अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों एक नमूने के तौर पर मैं आपको 2014 में जो एक प्रश्न पूछा गया है खेल के ऊपर वो यहां याद दिलाना चाहूंगा, उसकी याद दिलाना चाहूंगा। उसका कारण यह है कि आपको ये पता लगे कि ठीक है टॉपिक तो मैंने खेल का बता दिया, लेकिन एंगल क्या होता है, उसका कोण क्या होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाने के। नहीं तो आप पता लगा खेल के क्या प्रोग्राम है सरकार के, क्या उन्हें आप रटने में लग जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं आता है। आपको प्रोग्राम्स मालूम है कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए सामान्य तौर पर, रटने की बात नहीं है। फिर अब आपको इन योजनाओं का क्या प्रतिफल मिल रहा है, क्या इसमें और ऐड होना चाहिए, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या कमियां रह गई हैं, इनकी समीक्षा अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, या तो आपको पढ़ने को मिल जाए या आप अपनी तरफ से उसे सोच सकें। तो देखिए मैं आपको एक प्रश्न पहले सुना देता हूं जो पूछा गया है, वो है खिलाड़ी ओलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता है, वापसी पर विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नगद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है, ये स्टेटमेंट है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणों पर चर्चा कीजिए। मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, थोड़ा सा हिंदी इसका कठिन कर दिया है। एन एथलीट पार्टिसिपेंट्स इन ओलंपिक्स फॉर पर्सनल ट्रायम्फ एंड नेशंस ग्लोरी, विक्टर्स आर शोड विथ कैश इंसेंटिव्स बाय वेरियस एजेंसीज ऑन देयर रिटर्न, डिस्कस द मेरिट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टैलेंट हंट एंड इट्स कल्टिवेशंस एज अगेंस्ट द रैशनल ऑफ रिवार्ड मैकेनिज्म एज इनकरेजमेंट। इंग्लिश में ज्यादा सरल है, हिंदी में थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। तो इस तरह के मित्रों प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए अब उस पर मैं विशेष नहीं आऊंगा, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। फिर जब हम खेल की बात करते हैं तो देखिए खेल का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है और दूसरा शारीरिक फिजिकल पक्ष तो है ही। मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है कि अगर आप आउटडोर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट तरीके से होगी, क्योंकि देखिए खेल हमेशा हार जीत करना सिखाता है, आपको हारना सिखाता है। हारना सीखना बहुत बड़ी बात है। जहां जो बाहर नहीं खेलते हैं, जो अपने आजकल कंप्यूटर गेम्स हो गए अपने कमरे में बंद रहते हैं, तो वो उनको हारने की आदत नहीं पड़ती है, तो वो थोड़े से असहिष्णु किस्म के हो जाते हैं, उनकी सहन शक्ति कमजोर हो जाती है। देखिए जब आप हारना सीखते हैं इसका मतलब है कि आपकी सहन शक्ति विकसित हो रही है। आप पब्लिक में हार रहे हैं, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और आप सबके सामने हार रहे हैं और उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बर्दाश्त करने की क्षमता डेवलप होती है, जिसे आप सहनशीलता कह सकते हैं, सहिष्णुता कह सकते हैं। फिर आप दूसरे को अपनाने की भी क्षमता होती। देखिए आपने महसूस किया, आपने देखा होगा महसूस किया कि जब लोग दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक तो हारेगा, हार गया तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने का मतलब क्या है कि कोई बात नहीं, इसके बावजूद हम दोस्त हैं। एक दूसरे को हराने के बाद, जब तक हम खेल रहे थे तब तक एक दूसरे के दुश्मन थे, हराने में लगे हुए थे कि इसको हराना है, इसको हराना है। अब जब फैसला हो गया तो कौन हारा कौन जीता छोड़ो, आओ गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हम दोनों दोस्त हैं। तो इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप जांचने और समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा मानवीय गुण आदमी के तहत पैदा करता है। फिजिकल फिटनेस की तो खैर बात ही है, वो तो आप जानते ही हैं। यहां मैं आपको एक दो बातें थोड़ी सी बताना चाहूंगा सरकारी योजनाओं के तहत। मित्रों बातें तो करने के लिए बहुत हैं लेकिन समय बहुत नहीं है। सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया खेलो इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसके बारे में आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं दो तीन प्रोग्राम्स आपको बहुत सिंपल से, दो जो सबसे बड़े प्रोग्राम है वो मैं आपको बता दूं। जो बेसिकली जो खेलो इंडिया है ये टैलेंट हंट प्रोग्राम है कि देश में जो प्रतिभाएं हैं उनकी खोज की जाए। एक फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि इससे पहले खेल से संबंधित जो तीन प्रोग्राम थे उन सबको मर्ज करके मिला करके खेलो इंडिया बना दिया गया है। वो तीन प्रोग्राम कौन कौन से थे आप थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि आपको आगे चल करके कंफ्यूजन ना हो। राजीव गांधी खेल अभियान पहला था, दूसरा था अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, यानी कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, और तीसरा था नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। ये तीन स्कीम थी, तीन योजनाएं थी, इन तीनों योजनाओं को मिला करके अब खेलो इंडिया तैयार कर दिया गया है पहला। दूसरा मित्रों है एक नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, इसकी स्थापना की गई है। और एक अच्छी बात है कि इस कोष में सबका योग सब यह कोष सबके योगदान के लिए खुला है। इसमें सरकार पैसा देती है, इसमें जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो पैसा दे सकती हैं, इसमें प्राइवेट व्यक्ति भी पैसा दे सकता है, इसमें कारपोरेट जगत भी पैसा दे सकता है इस कोष में, और यहां तक कि जो अनिवासी भारतीय हैं वो भी इसके लिए पैसा भेज सकते हैं। और उनको ये सुविधा दी गई है कि इस कोष में जो जितना भी पैसा देगा उसकी वह राशि इनकम टैक्स से उसको छूट इनकम टैक्स में मिलेगी ताकि लोग इसमें पैसा देने के लिए प्रोत्साहित हो। तो ये एक अच्छा मॉडल है कि गवर्नमेंट प्लस लोग मिलकर के इस कोष को आगे बढ़ाए, फिर इस कोष का इस्तेमाल होगा खिलाड़ियों के विकास के लिए, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए। और तीसरा मित्रों की डिसेबिलिटी जो हम दिव्यांग कहते हैं उनके लिए भी सरकार अभियान चला रही है, उनके लिए भी स्कीम्स हैं। तो ये तीन बड़ी योजनाएं हैं और मेरे सबसे इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त होगा। हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, मनीष कुमार रोसेरा बिहार से, खुशबू कुमारी, संदीप प्रसाद बोकारो स्टील सिटी से, सचिन अड़गांवकर अकोला महाराष्ट्र से, आदित्य राय साहिबगंज झारखंड से, सुभाष कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर बिहार से, हेतराम प्रजापत और चंदन सिंह कुंवर, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।